یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 808.
18th of December year 2005 my wife in Gulzar Rahim Jamat Khana of Karachi. اب جماعت کو مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. میرا گلا آج اتنا اچھا نہیں, پھر بھی اب دعا کرو کہ میں اس چیز کو نبھاؤں. میں کینیڈا میں رہتا ہوں اور 7 برس کے بعد پاکستان آیا ہوں. مومن جماعت کی باتیں سنتا رہتا تھا. انشاءاللہ مولا آپ کے اوپر, آپ کی آل اولاد کے اوپر دین و دنیا کی نعمتیں اتارے اور ایمان سلامت. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وکل شیء احسنہ فی امام مبین. اگر امام پہ سلوات پڑھیے ہم یہ 2 آیتیں ہر روز اپنی, ہماری نماز جو ہے ہماری دعا ہے, ہم 3 دفعہ روز پڑھ رہے ہیں. خدا نے یہ حکم سب مسلمانوں کو نہیں کہا, یہ صرف ان کو کہا ہے کہ جنہوں نے ایمان لایا. تو کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت کے جو مسلمان تھے انہوں نے ایمان نہیں لایا؟ نہیں. اکثر مسلمان جو تھے وہ اپنے ٹرائب کے, ان کے اندر جو بڑے بڑے آدمی تھے ان کے ماننے والوں میں سے اگر چیف نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے جو اتنے آدمی تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. خدا خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اے محمد ان عربوں کو کہو کہ تم نے اسلام کو قبول کیا ہے مگر ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گیا. اس پر سے میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ خدا نے یہ حکم کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ان کو کہا ہے جو ایمان لائے. یا ایھا الذین آمنوا, جنہوں نے ایمان لایا उनको खुदा ने ये बात कही। अब ये चीज के अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह हमें नजर नहीं आता, लेकिन मोहम्मद की इताअत करो कि जो मोहम्मद है वो खुदा का रसूल है। ऐ मोमिनो, हम इस्माइली लोग जो हैं, तमाम उम्मत मोहम्मदी में आजकल इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब है, और हम जिस राह पे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वही सच्ची राह है। मैं आज आपके सामने थोड़ी सी बातें जरूर करूंगा ताकि आपको इस बात का पता लगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जो मुशरिकीन थे, अरब लोग जो थे, वो खुदा की हस्ती को मानते थे मगर बुत परस्त थे। लेकिन जब रसूल अकरम ने अपनी नबूवत का इजहार किया और ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी ने इनकार नहीं किया, मगर जब ये कहा कि मोहम्मद रसूल अल्लाह, तो सब बिगड़ गए। तनाजा अल्लाह के साथ ना था, मोहम्मद के साथ था। अबू सुफियान जो सबसे बड़ा दुश्मन था इस्लाम का, वो ये कह रहा था कि हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन मोहम्मद को नहीं मानते। मैं ये बात आपको याद कराता हूं, आपने जो पढ़े लिखे हैं बैते रिजवा को याद करो। हिजरी सन 7 के अंदर रसूल अकरम ने ऐलान किया, 8 में शुरू में और 8 में बाद हज हुआ। नबी ने ऐलान किया कि मैं हज के लिए जाता हूं, 10,000 मुसलमान तैयार हो गए। मदीने से चल के जब मक्का के करीब पहुंचे तो मक्का वालों ने, मुशरिकीन ने एक आदमी को भेजा, नबी को कहो कि इस बरस आप हज न करो, मक्का में न आओ, वगरना लड़ाई हो जाएगी। नबी करीम ठहर गए, दरख्त के नीचे हुजूर ने सबकी बैत ली। इस बैत को बैत रिजवा कहते हैं, और नबी ने एक एग्रीमेंट बनाया कि हम इस दफा चले जाते हैं और दूसरे बरस आएंगे, और मक्का वालों ने इसके ऊपर साइन किए। इसी तरह से रसूल अकरम ने खत लिखने के लिए, दस्तखत करने के लिए कलम मंगाई। अबू सुफियान कहता है कि उसमें लिखा था कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रसूलुल्लाह। तो अबू सुफियान ने कहा कि हम अगर तुम्हें मानते कि तुम रसूल हो तो तुम्हें झगड़ा ही नहीं था, ये अल्फाज काट डालो रसूलुल्लाह का। मुर्तजा अली को कहा कि यार अली ये काट डालो, मौला कहने लगे मैं नहीं काटूंगा। आप ख्याल करो ये एग्रीमेंट मौला ने लिखा था। मुर्तजा अली कहने लगे या रसूलुल्लाह मैं ये अल्फाज नहीं काटूंगा, कि नबी ने खुद ने अपने हाथ से वो अल्फाज काट डाले। मैंने ये बात आपको इसलिए सुनाई, एक वाहिद अल्लाह है, इसके साथ कोई झगड़ा नहीं था, झगड़ा मोहम्मद के साथ था। कबीला कुरैश जो था वो सबसे पावरफुल कबीला था, और इस कबीले के जो लोग थे वो सारे अरब स्तरों के ऊपर इनडायरेक्ट हुकूमत करते थे। वो हुकूमत आज तरह की न थी, बेहिसाब कबाइल थे उधर, मगर नबी करीम चुपचाप वापस चले आए। इस पर हजरत उमर कहने लगे कि मुझे आज तक कोई भी ऐसी बात न मिली कि जिससे मेरा ईमान खराब हो गया, लेकिन आज जबकि नबी ने कहा मैं हज करने जाता हूं और हज किए बगैर वापस आ गए, हजरत उमर कहते हैं कि मेरा ईमान खराब हो गया, मुझे मोहम्मद की नबूवत में शक पैदा हुआ। ये वो वाकया है कि जो हमें इस्माइलियों को याद रखना चाहिए। क्यों याद रखना चाहिए? इसलिए कि जो नबी होते हैं या इमाम होते हैं वो इस किस्म की बातें भी बाज दफा करते हैं कि अपने फरानीन को बदल देते हैं, और जमाने के हिसाब से जैसा मौका आता है उस हिसाब से वो फरमान करते हैं और जमात की रहनुमाई करते हैं। नबी करीम खुदा के रसूल थे, और नबी करीम की जो अतायत थी वो अल्लाह की ताबेदारी थी। मैंने अभी कहा कि खुदा आंख से नजर नहीं आता, लेकिन मोहम्मद आंख से दिखते थे, इसलिए उसकी ताबेदारी वो खुदा की ताबेदारी थी। अब खुदा कहता है कि तुम्हारे दरमियान जो हाकिम है, यानी तुम्हारे ईमान का, तुम्हारे दीन का हाकिम जो उले अम्र है, जिसको अम्र हुक्म करने की ताकत है, उसकी ताबेदारी करो। मैं एक और बात आपको याद करना चाहता हूं, मोहम्मद की ताबेदारी अल्लाह की ताबेदारी है। अब हमारे दरमियान में मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, तो क्या ये आयत रद्द हो गई? नहीं मोमिनों, आयत रद्द नहीं हुई, लेकिन खुदा ने कह दिया है और ये हुक्म कयामत तक रहेगा कि तुम्हारे दरमियान जो साहिबुल अम्र है उसकी ताबेदारी करो। अल्लाह, रसूल और साहिबुल अम्र जो है, ये तीनों एक लाइन में खड़े हैं। वो उलिल अम्र रसूलुल्लाह फरमाते हैं गदीर हुम में कि मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला है। मैं फिर आपको एक बात याद कराना चाहता हूं, जिस तरह मैंने ये आपको अर्ज की कि खुदा की ये अतायत जो अताबेदारी उन्हें लम रखी ये मोमिनीन के लिए है, सब मुसलमानों का नाम नहीं है। इसी तरह से 120,000 आदमी थे, औरत और मर्द, गदीर में, और नबी कहते हैं कि जिनका मैं मौला हूं, उसका मतलब यह है कि मैं सबका मौला नहीं हूं। और ऐ मोमिनों, सब लोग मोहम्मद को मौला नहीं मानते थे, इसलिए जो तख्सीस की है रसूल पाक ने कि वो लोग के जो मुझे मौला मानते हैं, अली उनका मौला है। तो जो अली है वो उलिल अम्र है, और ये उलिल अम्र साहिबुल अम्र जो है ये कयामत तक की निशानी है। अली के बाद हुसैन, जैनुल आबदीन, ये तमाम हमारे मुबारक इमामेन जो है, ये आइमा तो तहरीन हजर इमाम आज हमारा इमाम है और वो साहिबुल अम्र है। حضر امام کی تابعداری محمد کی تابعداری ہے اور محمد کی تابعداری اللہ کی تابعداری ہے. رسول اکرم بہت دفعہ فرمایا کرتے تھے کہ علی جو تمہارے درمیان بیٹھا ہے اس کا نور اور میرا نور ایک ہی نور ہے. نبی کے لیے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ سب مسلمان نبی کو مانتے ضرور ہیں لیکن نبی کے حکموں کے اوپر سب لوگ نہیں چلتے. ہم اسماعیلی جو ہے ایک خصوصی فرقہ ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا. عام جو مسلمان تھے وہ جاہل تھے. اس زمانے کی کبھی تاریخ پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کیسی کیسی جہالت کرتے تھے. اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ظلم و ستم بے حساب تھا. سو سو دو دو سو برس تک قبیلوں کے درمیان لڑائیاں جاری رہتی تھی. اگر باپ مر گیا اور جو اپنا بدلہ نہیں لیا تو اپنی اولاد کو کہہ جاتا تھا کہ میرا بدلہ لینا. اس طرح یہ دشمنی سو سو برس دو دو سو برس چلتی رہی تھی. نبی کریم نے ایک بہت بڑی سیاست سے کام لیا. ان سب کو اکٹھا کرنے کے لیے حضور نے بڑے بڑے قبیلے جو تھے ان میں سے ایک ایک عورت سے شادی کی. کنواری لڑکی صرف بی بی عائشہ تھی کہ جو رسول اکرم نے ابو بکر کے کہنے سے قبول کیا. وگرنہ ستر برس کی پچہتر برس کی عورت سے جو دو دفعہ بیوہ ہو چکی ہے یا چھوڑی گئی ہے ان عورتوں سے رسول اللہ نے شادیاں کی. اس میں کوئی بھی دنیا داری کی چیز نہ تھی, کوئی بھی عیش عشرت عیش و عشرت کی بات نہ تھی. لیکن حضور نے جب نو بڑے بڑے قبائلوں میں سے ایک ایک ایسی بیوہ عورت سے شادی کی تو حضور ان سب کے داماد بن گئے. اور سب کے داماد بننے سے ان سب کی رشتہ داری ہو گئی اور اس وجہ سے ان کی دشمنیاں مٹ گئیں. تمام عربستان کو یکجہتی عطا کر دی نبی نے. مگر جو اندر بغض بھرا تھا وہ نہیں گیا اور وہ بغض خصوصاً بنی قریش میں تھا جو علی اور نبی کے خلاف تھا. اس میں خاص طور پہ جو بغض تھا وہ علی کے خلاف بہت تھا. رسول اکرم کی محبت, رسول اکرم کا خیال, رسول اکرم کی علی کے لیے جو عزت تھی اس کی وجہ سے قریش کے لوگ جلتے تھے. میں آپ کو ایک واقعہ بیان کروں. مرتضی علی کو یمن بھیجا. حضور اس کو چھوڑنے کے لیے مدینہ سے باہر آئے. مرتضی علی کے ساتھ جو قافلہ جانے والا تھا وہ بالکل تیار کھڑا تھا. باہر آئے, چند اصحاب ساتھ تھے. اس میں حضرت عمر تھے, حضرت ابو بکر تھے, حضرت عثمان تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. تو اس طرح جب یہ باہر آئے چھوڑنے کے لیے تو علی نبی دونوں خوب باتیں کرتے رہے. یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے نزدیک آیا تو حضرت عمر کہتے ہیں, یا نبی اب علی کو جانے دو, رات قریب آ گئی. تو بھی مرتضی علی نے اور علی نے باتیں بند نہ کی. آخر اندھیرا شروع ہوا تب دونوں نے آپس پہ مصافحہ کیا, معانقہ کیا اور حضرت علی اونٹ پہ بیٹھ گئے. गवर्नर हुए। अब देखो खास बात, जब अली का ऊंट जा रहा है, नबी करीम उसको देख रहे हैं, हजरत उमर कहते हैं कि या नबी चलो अभी वापस, आपने सुना नहीं, देखते रहे देखते रहे देखते रहे, यहां तक कि ऊंट आंखों से गायब हो गया, उफ्क में चला गया। उस वक्त रसूल अकरम की आंखों से आंसू निकले, हाथ उठा के कहते हैं ऐ अल्लाह, अली जब तक वापस न आवे मैं उसको देखूं, तब तक मुझे मौत न भेजना। बहुत बड़ी चीज है इसके अंदर, कितनी मोहब्बत कि ऐ अल्लाह, अली जब तक वापस न आए और मैं उसको देखूं, तब तक मुझे मौत न देना। ये मोहब्बत अली नबी की दूसरों से देखी नहीं जाती थी, इसलिए अली से हसद करते थे। बसावकात मुर्तुज़ा अली और हजरत अली लंबी लंबी बातें किया करते थे और दूसरे असहाब जो थे उनको बुरा महसूस होता था। माफ करना मोमिनीन, उलिल अम्र अली, साहिबुल अम्र अली, खुदा के चेहरे वाला अली, खुदा का हाथ यदुल्ला अली, खुदा की आंखें ऐनुल्ला अली। ऐ मोमिनो, अली क्या था? 5 फुट का आदमी, मगर उसमें इलाही ताकत थी, खुदा का नूर था। इसी नूर की वजह से हम उनको इमाम मानते हैं और रसूल अकरम के कहने से मानते हैं। अली जो है वो हमारे अव्वल इमाम है। नबी कहते थे कि ये मेरी जो इतरत है वो कयामत तक चलेगी, हुसैन की नस्ल में से। मैंने थोड़े दिन पहले अपनी एक वाज में जिक्र किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे 99 साल के हो गए, 99 ईयर्स के, और औलाद नहीं थी। तो एक दिन कहा क्या है खुदाया, क्या मैं बे औलाद मर जाऊंगा? अल्लाह ने कहा नहीं, मैं तुझे बेटा दूंगा। बहुत खुश हुए, लेकिन दिल में जरा वसवसा था। अल्लाह को कहा कि या खुदाया, मैं तकरीबन 100 बरस का हो गया, क्या इस उम्र में मुझे औलाद हो सकती है? तू खुदा कहता है तू क्या समझता है कि तेरे पांव के पास जो पत्थर है, अगर मैं चाहूं तो इस पत्थर में से 25 जवान आदमी निकाल। सजदा किया, इस्तग़फार किया, खुदा का शुक्र किया, घर आए। बीबी सारा थी, वो 75 साल की थी, उसको कहा कि खुदा ने मुझे बिशारत दी है कि हमें औलाद होगी। कहने लगी ख्याल तो करो, 99 साल के हो गए, मैं 75 बरस की बूढ़ी हो गई, क्या अभी हमें बच्चा होगा? लेकिन खुदा का हुक्म था, बीबी सारा को बच्चा हुआ, लेकिन इसके पहले بی بی حاجرہ کو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ہیں. بی بی حاجرہ تھی بی بی حاجرہ لونڈی تھی, اور جب حضرت بی بی سارا کو بچہ نہیں ہوتا تھا تو اس نے کہا کہ یہ میری لونڈی سے شادی کر لو تو خدا شاید ہمیں اولاد دے دے. بہت برسوں تک بی بی حاجرہ کو بھی بچہ نہ ہوا, لیکن جب خدا نے یہ اس کو بشارت دی تو پہلے حاجرہ کو بچہ ہوا, اور 9 برس کے بعد بی بی سارا کو بچہ ہوا. 9 برس یعنی 75 برس اور 9+9 84 ایئرس کی ایج میں بی بی سارا کی 84 برس کی عمر میں ان کو حضرت یعنی اسحاق پیدا ہوئے. جب یہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے 6 برس کے قریب, بعض روایت کے حساب سے 9 سال کے ہو گئے, لیکن پڑھنے سے ریسرچ کرنے سے مجھے ایسا لگا کہ 6 سال کی عمر برابر ہے. خدا نے کہا ابراہیم اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر. سوچ میں پڑے اسماعیل سے زیادہ مجھے کوئی پیارا نہیں, تو کیا خدا چاہتا ہے میں اسماعیل کو قربان کروں؟ ذرا آج کا چاہے. دوسری رات کو پھر یہ حکم ہوا, تیسری رات کا بھی حکم ہوا, تو پھر بیٹے سے بات کی حضرت اسماعیل سے. حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا جان اگر یہ خدا کہتا ہے تو آپ ضرور کریے اور میں تیار ہوں. خود ہی حضرت اسماعیل کہیں سے چھری لے آئے اور ابا کو لے کے چھوٹی سی نہر تھی اس کے کنارے, رومال لے کے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پہ پٹھی باندھی تاکہ دیکھے نہ اور پزران محبت جاگ نہ اٹھے. گود میں سو گئے اور حضرت ابراہیم نے چھری پھیرا دی, جلدی سے آنکھیں کھولی تو دیکھا حضرت اسماعیل کھڑے ہیں اور ایک ڈمبا عرش سے اترا اور وہ قتل ہو گیا, ذبح ہو گیا. خدا کا شکرانہ کیا. خدا نے کہا اے ابراہیم تم امتحان میں پاس ہوئے, میں اس خوشی میں تمہیں ساری دنیا کا نہیں سارے انسانوں کا امام بناتا ہوں. ان نجائلوں کا للناس امام. انسانوں کا میں تمہیں امام بناتا ہوں, انسانوں کا یعنی تمام دنیا کے انسان, چاہے کسی معافی چاہتا ہوں چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں تو ان کا امام ہے. عرض کی یا مولا کیا میری اولاد کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ فرمایا ہاں یہ میرا حکم ہمیشہ کے لیے پرماننٹ ہے, لیکن تیری اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان کے لیے نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یہ امامت اتری, اور اللہ کا یہ قول قیامت تک کے لیے سچا ہے. یہ امامت قیامت تک چلے گی. کوئی بھی آپ کا دوست عالم ہوگے مسلمان ہے اس کو پوچھو کہ یہ خدا کا حکم سچا ہے, کہے گا ہاں. تو آج کی دنیا میں کون امام ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں سوائے مولانا حاضر امام شاہ کریم کے. اس برس 2005 میں آج سے 6 مہینے پہلے جارڈن میں وہاں کے کیپٹل عمان کے اندر ایک کانفرنس ہوئی, जिसमें 140 दुनिया भर के उलेमा इकट्ठे हुए। जॉर्डन के बादशाह ने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई, हजर इमाम को भी दावत दी गई, लेकिन मौला आए नहीं। अपनी एक स्टेटमेंट लिख के मौला ने भेजा, जिसको वहां पढ़ा गया। जॉर्डन का जो बादशाह है, जो गुजर गया, वो हुसैन, उसके लड़का है अभी। ये लोग भी दावा करते हैं कि हम आले रसूल हैं, इसलिए कि वो इमाम हसन की औलाद में से है। जैसे कि मोरक्को का बादशाह जो है, वो भी इमाम हसन की औलाद में से दावा करता है। लेकिन रसूल अकरम का ये कहना कि मेरी इतरत हुसैन की औलाद में चलेगी, तो हजर इमाम ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि मैं डायरेक्ट डिसेंडेंट हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह का, और मैं 49th इमाम हूं इस्माइलियों का। मैं अपनी स्टेटमेंट ये करता हूं, 140 उलमाओं, दुनिया भर के उलमा, उसमें सऊदी अरेबिया के लोग भी थे और शेख उल अजहर जो था वो भी था, और ये लोग जब ये स्टेटमेंट सुनी, सबने उसको कबूल किया और किसी ने उजर नहीं किया कि इमाम का ये दावा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से 49th डायरेक्ट डिसेंडेंट हूं। ये एक बड़ी हिस्टोरिकल चीज है। आप में जो अंग्रेजी जानते हैं, हजर इमाम की इस स्टेटमेंट को पढ़ो और अपने घर में रखो, ये एक बहुत बड़ा वसीखा है। तो इमाम जो है, इमाम हक साहिबुल अमर मौलाना हजर इमाम शाह करीम है, और हम इस्माइली इस चीज को कुरान और हदीस के तहत मानते हैं कि खुदा ताला का जो नूर मोहम्मद में था, मोहम्मद के बाद अली में था। मगर यह न समझना कि जो मोहम्मद का नूर था वो अली में आया, ऐसा नहीं है। अली में भी नूर था, मोहम्मद में भी नूर था। अना व अली नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर है। ये इमामत का नूर चला आया, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने वफात पाई, नबूवत खत्म हो गई, नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, तो क्या मोहम्मद का जो नूर और हिदायत थी वो भी बंद हो गई? नहीं दीनदारों, मोहम्मद की हिदायत जारी है और वो इमाम के साथ साथ चलती है। हम इस्माइली उसको पीर कहते हैं। अव्वल मुर्शिद मोहम्मद है, उसके बाद उसका जानशीन पीर इमाम हसन है। हम इमाम हसन को भी इमाम कहते हैं, इमाम हुसैन को भी इमाम कहते हैं, लेकिन फर्क यह है कि जो इमाम हुसैन है वो इमाम मुस्तखर है, और जो इमाम हसन है वो इमाम मुस्तऊदा है। हमको ये दोनों चीजें याद रखनी चाहिए। अरबी जबान के अंदर पीर का लफ्ज नहीं है, उसमें उसको हुज्जतुल इमाम कहते हैं। पीर जो है वो इमाम का असिस्टेंट है, हिमायती है, काम करने के लिए, मजहब की इशाद करने के लिए, लोगों को, मुरीदों को मजहब सिखाने के लिए पीर चाहिए। इसीलिए मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपनी विल में ये लिखा कि मैं अपने पोते करीम को, जो मेरे बेटे अली का बेटा है, इमामत और पीरी जौमा दोनों देता हूं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शादाकार की ये विल पढ़ी गई और इसके हिसाब से मौलाना हाजर इमाम तख्त इमामत पे बैठे कि जिस तख्त पे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह थे। प्रिंस अली खान को इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने इमामत नहीं दी, लेकिन आप हयाती में, सुल्तान मोहम्मद शाह की हयाती में प्रिंस अली खान को बहुत दफा मजहबी कामों के लिए भेजा करते थे। प्रिंस अली खान ने बैतुल ख्याल के बोल भी दिए और अपने अब्बा की तरफ से जमातों के अंदर बैत भी ली है, लेकिन इमाम जो जानता है कोई नहीं जानता। इमाम खुदा का नूर है, वो कभी गलती नहीं करता। इमाम जो है वो पाक और ताहिर है। ऐ मोमिनों, अपने साहिबुल अम्र इमाम हजर इमाम शाह करीम को हम लोग मानते हैं और हम खुश नसीब हैं कि उसकी इमामत के दरमियान हम मौजूद हैं। मैंने अभी आपको कहा कि इमाम कभी गलती नहीं करता। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने कोई गलती नहीं की कि अपनी इमामत अपने पोते को दी और बेटे को न दी। सीरिया वालों ने जब ये सुना कि शाह करीम को इमामत दी गई तो वो लोग अटक गए। प्रिंस अली खान हवाई जहाज में बैठ के सीरिया गए और उनको जाके कहा कि मैं नहीं, मेरे बेटे को मेरे अब्बा ने इमाम बनाया है, अब तुम आओ और मेरे हाथ पे मेरे बेटे की बैत करो। और सीरिया की जमात ने प्रिंस अली खान के हाथ पे मौलाना हाजर इमाम शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि की बैत की है। इमामत का सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। अगर ये दुनिया फना हो जाए तो सबसे आखिरी बशर अगर कोई हुआ तो उस जमाने में इमाम बाकी रहेगा, क्योंकि अल्लाह का रसूल कहता है कि अगर एक आंख के लहजा भी इमाम का कदम दुनिया पे ना हो तो ये दुनिया बर्बाद हो जाए। इमाम हामिल नूर है, वो साहिबुल अम्र है, उस जैसा कोई नहीं हो सकता। ये सिलसिला हमेशा से चला आया, अली के बाद, अली से पहले इमामत का नूर मौजूद रहा है। अली से पहले हजरत अबू तालिब के पास इमाम का नूर था, उनके पहले हजरत अब्दुल मुतल्लब के पास नूर था, ये नूर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चला आता है। हमको भी सदरुद्दीन ने एक शजरा बना के दिया। इस शजरा को कुरान शरीफ ने शजरतुल मुबारका कहा है और वो हजरत शीश अलैहिस्सलाम जो हजरत आदम के बेटे थे वहां से चला आया है। हजरत शीश, हजरत साम, हजरत मलकान, इस तरह ये सिलसिला हजरत इब्राहिम तक आया और इब्राहिम से हजरत इस्माइल में से ये सिलसिला चला आया और आज तक मौलाना हजरत इमाम तक पहुंचा है। हजरत इमाम ने जब शादी नहीं की थी, प्रिंस अली खान की दफन न हुई थी, इटली की एक औरत ने जो रिपोर्टर थी साहब से इंटरव्यू मांगा। मौला ने इंटरव्यू दिया, कुछ सवाल जवाब वगैरह हुए, तो उसको मौला कहते हैं कि ये जो इमामत का सिलसिला है ये हमेशा रहेगा। तो कहती है कि योर हाइनेस माफ करना, अगर मैं पूछूं कि आपने शादी नहीं की और उसके पहले आप जो गुजर जाओ तो इसका क्या? और फिर हम हंस के कहते हैं मैं नहीं गुजरूंगा जब तक कि मेरा फर्ज बंद नहीं होगा। किस तरीके और जबरदस्ती से, यानी वजन दे के ये इमाम कहते हैं कि मैं अपना जानशीन छोड़ जाऊंगा। हमेशा से यह सिलसिला चला आता है, इमाम इमाम है, उस जैसा कोई नहीं। हमारे मजहब के अंदर बहुत बड़े बड़े आदमी, यानी यहां मेरा मतलब बड़े बड़ी रूहों से है, मिशनरी सबजली जब वो गुजर गए तो मौला ने उसको पीर का दर्जा दिया। वजीर इस्माइल गांग जी जूनागढ़ वाले, उनकी भी खिदमत और इबादत ऐसी थी कि जब वो गुजर गए तो मौलाना अली शाह माँ बाप ने उनको पीर बनाया। ऐसे हमारे मजहब में बहुत से लोग निकले हैं। मिसाल के तौर पर भगत काला रूड़ा 1933 में गुजर गए। भगत काला रूड़ा बहुत आबिद शख्स थे। जब वो गुजर गई तो इमाम सुल्तान ने शाह फरमाया कि काला रूड़ा दुनिया में घूमता था मगर चौथे आसमान तक की उसको खबर होती थी कि चार आसमानों में क्या है और क्या हो रहा है। हमारे यहां एक औरत भी ऐसा हुई है अफ्रीका में, वर्ष यानी बच्ची बाई, कि जो इबादत में बहुत बड़ी हुई थी। हमारी कौम में ऐसे बहुत बड़े बड़े आदमी निकले हैं इबादत के अंदर, रूहानियत के अंदर, लेकिन कभी किसी ने भी अपना रास्ता छोड़कर इस किस्म की दलील कभी नहीं की कि इमाम के लिए कुछ शक पैदा करे। इमाम इमाम है, मालिक है, और इमाम जो है रहीम व करीम है। रसूल अकरम मोहम्मद के लिए खुदा ताला ने दो लफ्ज कहे हैं। खुदा ताला के नामों में एक नाम है रऊफ, एक नाम है रईफ। तो खुदा ताला की सिर्फ होता है रऊफ रहीम, लेकिन खुदा ने मोहम्मद के लिए ये अल्फाज कहे कि जो मोहम्मद तुम्हारे दरमियान है वो रऊफ रहीम है। खुदा की सिफतें मोहम्मद में थी, इमामों में है। और ये इमाम जो है वो ज़ात नूरानी होती है, उसका हुक्म मानो, उसकी इबादत करो, उसको राजी करो, और जब वो राजी होता है तो दीन और दुनिया की दौलतें बख्शता है। ऐ मोमिनों, हमारा इस्माइली मजहब हमें दुनिया के अंदर आबादी देता है। अल्लाह कहता है मैं अपने बंदों को दो जन्नतें दूंगा, एक मरने के बाद, एक मरने से पहले। लफ्ज जन्नत नहीं है, बाग है, और बाग का मतलब आराम करने की जगह है। बाग में आदमी जाता है, खुशी के लिए जाता है, सस्ताने के लिए जाता है। आज सारी दुनिया के अंदर 1 बिलियन से ज्यादा मुसलमान है। मैं सारी दुनिया में बहुत घूमा हूं और मेरे मौला के फजल से 123 ममालिक देखे हैं, 123 कंट्रीज देखी हैं, 123। मैंने 2-3 दिन पहले कहा कि मैं सारी दुनिया में घूमा, रस्तों के ऊपर भीख मांगने वाले सब कौम के लोग मिले, मुसलमान भीख मांगते रहे, क्रिश्चियन जो है पाद ये ईसाई इनके भिखारी हैं, यहूदी हैं, हिंदू हैं, सब तरह के लोग हैं, लेकिन मैंने सारी दुनिया में एक इस्माइली को रास्ते के ऊपर भीख मांगते नहीं देखा। एक इस्माइली नहीं मिलता ऐसा कि जो दुनिया में भीख मांगता होगे रास्ते के ऊपर, क्योंकि ये मौला हमारा मालिक बैठा है, हम किसी न किसी तरीके से आबादी में हैं। तमाम दुनिया के मुसलमानों के सामने हमारा ये जो फिरका है, निजारी इस्माइली फिरका, ये सबसे ज्यादा आबाद है, एजुकेशन में भी, मजहब में भी, सोसाइटी के अंदर, सियासती के तौर पे, सोशल के तौर पे, बिजनेस के तौर पे, इस्माइली कौम आबाद है और आबाद हो रही है। इसलिए हम मौलाना हाजर इमाम के नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि उसकी रहनुमाई में, उसकी गाइडेंस में हम लोग आबाद बन रहे हैं, और जैसे जैसे हम उसका हुक्म मानते रहेंगे आबाद रहेंगे। कौन है ऐसा दुनिया के अंदर कि जो आज हाजर इमाम काम कर रहे हैं वो काम करें? बहुत से मुसलमान बादशाह ऐसे हैं कि जिनके पास बेहिसाब दौलत है, लेकिन हजर इमाम जो आज काम कर रहे हैं, जगह जगह यूनिवर्सिटियां खोल रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, लोगों के लिए वो अच्छी तरह से कमाई कर सके इसके लिए इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, सारी दुनिया आज हजर इमाम को तहनियत पेश करती है, मुबारक देती है। ये इमाम हक है और ये हक हमेशा चलता रहेगा, ये हक कभी बंद नहीं होगा। मैं 1935 की बात करूं, 31 दिसंबर 1934 दिल्ली के अंदर मुसलमानों ने हजर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को एक सिफारसनामा दिया। मैं उस वक्त स्काउट यूनिफॉर्म में था, 40,000 मुसलमानों का मजमा था, मशहूर आलम शख्स था एक ख्वाजा हसन निजामी, अल्लामा इकबाल, इस किस्म के बड़े बड़े लीडर थे, इन सब के अंदर अल्लामा इकबाल खड़े होकर मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह लेफ्ट साइड में बैठे थे, ऐसा हाथ करके मजमा को कहता है अल्लामा इकबाल, आरा के खाकरा ब नजर कीमिया कुनन। ये वो है कि अगर खाक के ऊपर नजर डाले तो कीमिया बन जाए। आरा के खाक राब नजर कीमिया कुनन, सगरा वली कुनन मगुसरा हुमा कुनन। ये वो हस्ती है कि अगर किसी कुत्ते पे नजर डाले तो कुत्ता वली उल्ला बन जाए। इस किस्म की तारीफ आम मुसलमानों के अंदर गैरों ने की है। असल मेरे नाना की उम्मत है, नाना यानी मोहम्मद, क्योंकि बीबी फातिमा की औलाद है। बोला फरमाया ये मेरे नाना की उम्मत है, भले ये लोग मुझे नहीं पहचानते लेकिन मैं मुसलमानों को छोड़ नहीं सकता। ऐसा जरूरी एक दिन आएगा सारी दुनिया के मुसलमान मेरे पांव पड़ेंगे, मैं उनका हाथ पकड़ूंगा। ये है इमाम मेहदी का काम, वो कब होवे हमें मालूम नहीं, लेकिन हम तो खुश नसीब हैं कि मौलाना हजर इमाम की इमामत पे बैठे हैं, उसकी दुआएं लेते हैं, अनावधान कहते हैं। हजर इमाम 5-6 महीने पहले जून में कनाडा आए थे, 8 तारीख को हाजिर इमाम टोरंटो में थे और 10 तारीख को मैं रहता हूँ वैंकूवर में, वहां आए थे। तो वैंकूवर वालों ने, यहाँ आबिदा परवीन है पाकिस्तान की मशहूर गाने वाली, आबिदा परवीन को जमात ने उधर बुलाया, उसने हमें हाजिर इमाम की तारीफ में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई, दो चार गिनान भी बोलती है और हकीकत में उसके दिल में प्यार पैदा होता है जब वो गिनान बोलती है, कहती है कि मेरे दिल को खुशी होती है। तो हाजिर इमाम की हाजिरी में इसने दो चार गिनान बोले, कुछ कसीदे बोले, बोला बहुत खुशी है। जब उठे तो ये आई, बोला के पांव के गिरी, हाथ जोड़ के खड़ी हुई, बोला मैं इसको बहुत शाबाश कही। तो ये कहती है, सरकार आप मुझे खाना वदान बोलो। आबिदा परवीन मौला को अर्ज करती कि आप मुझे खाना वदान कहो। सफर मैं नहीं, ये सिर्फ मेरे मुरीदों के लिए है। और खाना वदान में जो बरकतें हैं हमें मालूम नहीं, ये खोनो अवॉद है, उसके अंदर घर, बीवी, बच्चे, तंदुरुस्ती, सेहत, रिज़्क वगैरह सब कुछ आता है। और आज हमारी जमात इस खाना वदान की बरकत से, ताकत से दिनों दुनिया में आबाद हो रही है। मौला आपको दिन दुनिया की खुशियां दे रहे, आपकी उम्मीदें पूरी करे, आपका ईमान सलामत रहे। मौलाना हाजर इमाम के सिवा हम किसी को नहीं मानते, इसके लिए हम अपने इमाम के ऊपर जान नसार करते हैं। मौला आपके आल औलाद को दिनों दुनिया में आबाद रखे, आला दर्जे का मोमन बनाए, आपको रिस्क करीमी देवे, सेहत और तंदुरुस्ती देवे। मौला आपको सुख से, आराम से, आबाद हिम्मत से लंबी जिंदगी अता करें, ताकि इमाम की खिदमतें कर सकें, आपके दुश्मन दफा करें, दीन और जमात के दुश्मन दफा करें। मौला अपनी नियामतें, बख्शिशें, रहमतें उतारें। मौलाना हाजर इमाम आपके घरों में, आपकी फैमिली में, जमातों के अंदर मोहब्बत और इत्तेफाक दे। मौलाना हाजर इमाम आपको नूर की बख्शिशें दें। मौलाना हाजर इमाम आपकी अनेक उम्मीद पूरी करें, आपकी दुआएं कबूल करें।